जी मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी, जिसे आप देख रहे हैं। हमारे मुआज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर फुरकान यासीन तशरीफ़ ला चुके हैं, चलते अलमदार की खिदमत में। जी अलमदार।
शुक्रिया रुबा जी। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि आज हमारा प्रोग्राम क्या है, और हमारा जो प्रोग्राम का मौजू है वो डायबिटीज़ में पाँव के ज़ख्म। यानी एक तो डायबिटीज़ वाकई बहुत ही यानी एक बड़ी बीमारी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, और उसके बाद जो उससे एक दूसरे जो यानी मुश्किलात पैदा हो रही हैं वो बहुत ही अहम हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर फुरकान यासीन खान साहब से, कि वो स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं। तो पहले सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपको खुश आमदीद कहेंगे कि आप हमारे वहाँ तशरीफ़ लाए, ज़हमत किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि मौजू बहरहाल आपको पता ही है, इसमें सबसे पहला सवाल जो हम पूछना चाहेंगे और नाज़रीन भी हमारे इसके बारे में जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ में तो क्या है वो तो सबको पता ही हो गई है, ये इस तरह की जो बीमारी होती है वो क्यों होती है, मतलब है क्या, एक तो बीमारी क्या है और होती क्यों है।
पहले तो सलाम करता हूँ हमें नाज़रीन सहर टीवी के।
जी शुक्रिया। सलाम।
ये जो डायबिटिक फूट है ये एक्चुअली एक ज़ख़म से शुरू होता है, पाँव का एक छोटा सा ज़ख़म से।
जी।
और चूंकि हम जानते हैं कि डायबिटिक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के हीलिंग प्रोसेस को कम कर देती है, बाज़ी वक्त बिल्कुल ख़त्म कर देती है, तो ये जो ज़ख़म है धीरे धीरे क्रोनिक हो जाता है और ये ज़ख़म सूखता नहीं है जल्दी। तो इसके कई सारे कारण हैं। एक तो पहली चीज़, डायबिटिक पेशेंट में जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, तो खून पाँव के उंगलियों तक नहीं पहुंचता है या पाँव तक नहीं पहुंचता है कई वक्त, तो उस वजह से ये ज़ख़म सूखने में काफ़ी सारा टाइम लगता है, और इस टाइम में इसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन, ये पस वगैरह जमा हो जाता है और ये अल्सर बन जाता है, और फिर ये इन्फेक्शन एक छोटे से ज़ख़म से लेके हड्डी तक पहुँच जाता है, और फिर अगर इसका सही तरह से इलाज ना किया जाए तो ये यहाँ तक भी पहुँचा जाता है कि पाँव काटने पड़े पेशेंट का, और ये काफ़ी ये मुश्किल काफ़ी बड़ी हो चुकी है इस वक्त। चूँकि 2018 में ये देखा गया है कि हर 30 सेकंड पे एक पाँव काटा गया है फ़कत सिर्फ डायबिटिक फूट की वजह से।
जी, मैं अभी भी इसको बारे में पढ़ रहा था कि बहुत तेज़ी से ये फैलती जा रही है।
यानी हर 30 सेकंड पे एक पाँव काटा गया है, यानी ये एक मसला बहुत बड़ा हो चुका है, और 70% ये मसला जो डायबिटिक का जो मसला जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं ये हमारे कंट्रीज़ में ज़्यादा है, हमारे देशों में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में ज़्यादा है।
अच्छा।
अमेरिका में और वेस्टर्न ममालिक में इसका इतना मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सबसे अहम चीज़ पेशेंट को दी जाती है वो कि जानकारी इस चीज़ की, किस तरह से इसको मालूमात दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कई सारे गाँव में या छोटे शहरों में लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उस वजह से ये चीज़ बड़ी हो चुकी है अभी। और दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ अमेरिका में और यूरोप में वगैरह सिर्फ 10% डायबिटिक पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे यहाँ नज़दीक के 40% डायबिटिक पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है डायबिटिक फूट की, तो एक परसेंटेज का बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे अहम चीज़ यह है कि पेशेंट को जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की, इस तरह से ये क्या चीज़ है, इसे कैसे बचा जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो जानकारी में सबसे पहली चीज़ ये है कि डेली केयर करना चाहिए फूट का, किस जैसे कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हर रोज़ अपना फीट का केयर करना चाहिए और हर रोज़ एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं कि जो पेरिफेरल नर्व्स है ये कमज़ोर हो जाते हैं, तो इनको दर्द का एहसास नहीं होता है, तो उस वजह से कभी कभी ज़ख़म इनको लगने पे पता नहीं चलता है कई दिनों तक, कुछ कभी कभी हफ्तों तक महीनों तक इनको पता ही नहीं होता कि ज़ख़म हो चुका है, और वो ज़ख़म इन्फेक्शन भी कर चुका है, और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन फैलता है अंदर तक। तो एक ऐसे स्टेज पे पता चलता है कि जब ऑलरेडी इन्फेक्शन हड्डियों तक पहुँच चुका है, और एक बार इन्फेक्शन जब हड्डियों तक पहुँच जाता है तो इसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि उसमें फिर एक सेप्सिस पैदा होता है, कि बैक्टीरिया जो पैदा होता है वो खून में चला जाता है, फिर इस बैक्टीरिया के वजह से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से फिर
और
इन्फेक्शन
ज़्यादा
ज़्यादा होता
इन्फेक्शन
है, तो
ज़्यादा
एक
हो जाता है।
साइकिल की तरह चलता रहता है ये। और इस साइकिल को एक बार ये साइकिल फॉर्म हो गया तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे पहले कि ये इन्फेक्शन हड्डियों तक पहुंच जाए, इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और प्रिवेंशन में ये एक ऐसी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए, कि जब तक ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो, आप कुछ भी इसका ट्रीटमेंट करें, कुछ भी
कोई
आप,
फायदा नहीं
कोई
होने
फ़ायदा
वाला।
नहीं, आप जितने भी एंटीबायोटिक्स दें, कुछ भी आप जो भी करें, अगर ब्लड शुगर आपका कंट्रोल नहीं है तो ये ज़ख़म कभी नहीं सूखेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ब्लड शुगर है,
उसकी केयर करना, देखना
केयर
उसको,
करना, देखना
एग्जामिनेशन करना उसका।
जी।
जी
और इसके प्रिवेंशन में ये है कि डायबिटिक फुटवेयर मिलते हैं, यानी एक मखसूस फुटवेयर मिलता है शूज़ की तरह,
जी
वो पहनना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे जगहों पर ये अवेलेबल नहीं है। तो घर पे भी अगर हो तो नरम सॉक्स वगैरह पहना करें डायबिटिक पेशेंट्स, और नरम शूज़ वगैरह पहन के रखा करें कि चोट वगैरह लगने के चांसेस कम हो। और बाहर भी अगर जाए तो शूज़ वगैरह कामिल पहने, जैसे हम क्यों, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा चप्पल वगैरह
चप्पल
इस्तेमाल,
के यूज़ करते
हाँ,
हैं।
तो जब बाहर जाते हैं तो चोट लग जाती है पेशेंट्स को
जी
और पता ही नहीं चलता इनको। तो फुटवेयर यूज़ करना चाहिए। और एक मखसूस इस किस्म के इसके सॉक्स आते हैं, सिल्वर लाइनिंग सॉक्स कहते हैं, वो
अच्छा,
डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये काफ़ी महंगा भी नहीं है, हमारे यहाँ पर आसानी से अवेलेबल है, ये यूज़ कर सकते हैं।
जी
और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए हमेशा, एक तो आप डायबिटिक का एक चेकअप कर रहे हैं, और फिर रेगुलर आपके फूड का एक्सरेस वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सब, अगर आप कोई भी पोडियाट्रिशियन कहते हैं,
जी
आज आजकल एक नई स्पेशलिटी इसके लिए बनाई गई है, क्योंकि ये मुश्किलात इतनी बढ़ चुकी है कि जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स वगैरह, न्यूरोलॉजी,
जी
न्यूरोसर्जन, एक स्पेशलिटी इसके लिए बनाई गई है पोडियाट्रिशियन। बड़े इंडिया के बिग सिटीज़, बड़े शहरों में भी है,
तो इसके
तो
बारे में थोड़ा सा और बता दें, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं वो ना जानते हों तो
जी
ये
जी
क्या है, क्या चीज़
क्या
अभी
चीज़
आपने अभी जो बताया है।
पोडियाट्रिशियन, ये
जी
एक स्पेशलिटी है,
जी जी
एक मखसूस, एक या MBBS के बाद इसकी स्पेशलिटी की जाती है
जी
पोडियाट्रिशियन, कि फ़क्त फुट एंड एंकल पे इसका केयर होता है, इनका केयर
जो
होता है
फोकस जो है
ज़्यादा
पूरा उस पर
जी।
होता है।
और ज़्यादातर इनके पेशेंट डायबिटिक फूड पेशेंट्स ही हैं,
जी।
ट्रॉमा वगैरह भी ये देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर डायबिटिक फूड पेशेंट्स ये देखते हैं।
डॉक्टर साहब, मेरा सवाल भी यही था, और यहाँ पर हमारे मोअज़्ज़ज़ नाज़र ने भी इस तरफ इशारा किया है कि ख़ास किस्म के आजकल पैड्स आ रहे हैं, अब जिनके पैरों में गैंगरिंग हो जाती है या ये ज़ख़म हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी उसमें मौजूद इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये पैड्स लगाए जाते हैं। किस हद तक
जी
ये बात जो है, यानी पैड इनको कंट्रोल कर सकता है?
देखिए, पैड्स एक्चुअली दो तीन किस्म के ये पैड्स आते हैं, एक तो जैसे कि सिल्वर लाइनिंग सॉक्स है, इसके सिल्वर लाइनिंग पैड्स आते हैं, और एक एक नेगेटिव प्रेशर के पैड्स आते हैं जिसमें एक सक्शन पंप भी लगा जाता है। ये सारे, जब तक अल्सर्स आपका जो है सो हड्डियों तक नहीं पहुंचता है, ये आप ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन एक बार ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका है कि आपके हड्डियों को भी ख़राब कर चुका है, तो उसके बाद ये पैड्स वगैरह इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी स्टडीज़ की गई है कि उनमें जिनमें ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा रहा है, इन्फेक्शन काफ़ी हद तक पहुंचने के बाद भी ये इफ़ेक्टिव हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर पैड्स भी आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल
अगर कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वुंड कॉम्प्लिकेटेड भी है तो हो सकता है उसका ट्रीटमेंट हो
हो सकता है।
जी।
सही।
लेकिन एक चीज़ और ये है कि कई सारे कंपनीज लो क्वालिटी के ये पैड्स वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल डिमांड है, तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड केयर से हुई है या
किस
नहीं।
तरह से है? बिल्कुल
जी,
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी अलंगा।
इसमें मेन पॉइंट मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, आपकी बातों से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड है,
जी
तो हम क्या दूसरे कोई और आसान तरीका नहीं है कि इन पैड के अलावा, जैसे पहले हमने बचपन में भी देखा है और आम तौर से होता है कि मालिश वगैरह से जो है ब्लड सर्कुलेशन सही करने की कोशिश की जाती है, क्या इसमें ये भी इफेक्टिव है या नहीं है?
जी एक्चुअली ब्लड
फिजियोथेरेपी
सर्कुलेशन,
जिसे कहा जाए आज के ज़माने में।
एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन का सबसे बेस्ट तरीका डायबिटिक पेशेंट्स में एक्सरसाइज है,
जी
इसलिए हम कहते हैं कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा वॉक करना चाहिए। जब
जी
वॉक करते हैं तो इतनी सर्कुलेशन हो जाती है कि उसके बाद मसाज या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं
जरूरत नहीं
पड़ती है।
पड़ती जी,
लेकिन डायबिटिक पेशेंट ओल्ड एज में जब
चलने
50
में
60
परेशानी हो
तक
जाती है
जी
उनको,
उनको दूसरे हड्डियों में मसले
जी
होते हैं, फिर वो चलने से अपने आप को
वेट
परहेज
भी
करते
हैवी
हैं,
हो
वेट
जाता
हैवी हो जाता है। लेकिन जो भी मुश्किलात हो, लेकिन कम से कम अगर आधा 1 घंटा भी अगर कोई चले
है। जी
तो उसका सर्कुलेशन इतना इनफ हो जाता है कि पैरों तक पहुँचे। लेकिन इसमें डायबिटिक में यह भी हो जाता है कि जो रग जो खून पहुंचाती है पैरों में
जी
वो खुद रग ही कमज़ोर हो जाती है,
सूख
रग
जाती
अंदर
है
से बंद हो जाती है।
जी,
तो उस सूरत में वॉकिंग वगैरह भी इतना हेल्प नहीं करते हैं सर्कुलेशन में, ये क्योंकि ये बीमारी का ही एक पार्ट है सर्कुलेशन ख़त्म हो
सर्कुलेशन।
जाना।
तो इसकी कोई सर्जरी भी हो सकती है या नहीं हो सकती है?
सर्जरी, ये माइक्रो सर्जरी है कि सर्कुलेशन को दोबारा से बनाए, और ये काफ़ी मुश्किल सर्जरी है कोई इसके लिए।
यानी अभी तक हुई है कि नहीं हुई है इस टाइप की
डायबिटिक
सर्जरी?
फूड के लिए नहीं, अभी तक नहीं हुई इस तरह की
इस
कोई
तरह की कोई
सर्जरी
सर्जरी नहीं हुई।
नहीं।
तो डॉक्टर साहब, फिर सबसे अहम सवाल यही बन जाता है कि आप जो है हमारे नाज़रीन के लिए इसके इलाज के तरीके बताएं कि क्या हो सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है
जी
आसानी से।
इसका इलाज कई सारे स्टेजेस में होता है। एक तो पहले ही अगर अगर इनिशियल स्टेज में ये ज़ख़म है तो सबसे पहली चीज़ है इसका ठीक तरह से केयर करना चाहिए।
जी
अगर ज़ख़म आपको हो गया तो उसकी हर रोज़ उसका ड्रेसिंग करनी चाहिए, ज़ख़म को साफ़ करना चाहिए नॉर्मल सलीन से या बेटाडीन या कोई भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, इससे ज़ख़म को कामिल तरीके से साफ़ करना चाहिए हर रोज़। या अगर ज़ख़म ज़्यादा नहीं है अंदर
जी
तक, इसको हर 2 दिन में 2-3 बार भी साफ़ कर सकते हैं,
जी
और कामिल ज़ख़म को बंद करके रखना चाहिए कि ज़्यादा इन्फेक्शन दोबारा ज़्यादा ना
पट्टी
हो।
वगैरह बांध के रखें
जी
उसमें।
और इसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी बहुत ज़रूरी है, और एंटीबायोटिक थेरेपी उस ज़ख़म का कल्चर पहले निकाल के उसका रिपोर्ट के हिसाब से एंटीबायोटिक थेरेपी इनकी देनी चाहिए, ये सही इसका तरीका है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान ऐसे जगहों पे ये इसको फॉलो नहीं किया जाता है,
जी
कोई भी डायबिटिक पेशेंट है ज़ख़म हो गया उसको एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसका
जी
कल्चर स्वैप होना चाहिए, इसका मतलब
किस
टिश्यू,
कंडीशन में है, क्या है?
इसका ना इसका टिश्यू जो है
जी
वुंड
जी
का ज़ख़म का, इसको लेके लैब में भेजते हैं,
जी
फिर
जी
वहाँ पर देखते हैं इस पर किस तरह का बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है,
जी
फिर उसके हिसाब से इसकी एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। तो कल्चर सेंसिटिव एंटीबायोटिक थेरेपी इसको कहते हैं कि वो देनी चाहिए कल्चर
जी
एंटीबायोटिक्स। और अगर ज़ख़म अगर आप ये स्टेज पार कर गए हैं इसके बाद भी ज़ख़म आपका नहीं सूख रहा है तो दूसरा स्टेज में ये है कि फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, क्योंकि फिर
अच्छा
एंटीबायोटिक आईवी
जी, आई भी
लगेंगे।
लगेंगे।
जी आईवी एंटीबायोटिक्स और ओरल एंटीबायोटिक्स में बहुत फ़र्क होता है, और यानी ज़ख़म जब आपका सेकेंड स्टेज में पहुँच चुका है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक साइकिल शुरू हो गया है, ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में जा रहा है और फिर सेप्सिस पैदा करेगा, आपको फीवर बुखार वगैरह आएंगे, तो उस वक्त में
यानी दूसरी
सबसे
मुश्किलात भी आ सकती हैं इसके साथ साथ।
जी जी बिल्कुल
जी
इसमें सेप्सिस हो जाता है कि
जी
बैक्टीरिया जब ब्लड में चला जाता है ना तो बॉडी सेप्सिस में चले जाती है, फीवर और किडनी फेलियर और आई का प्रॉब्लम, ये सारे मुश्किलात यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि डायबिटिक में अभी, पहले तो नहीं मानते थे लेकिन अभी ये मान रहा है कि आधे से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक फूड से शुरू होती हैं, तो इसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड स्टेज में जब आप चले गए ट्रीटमेंट के तो एडमिट होना है, आईवी एंटीबायोटिक्स लगेंगे और हॉस्पिटल में ठीक तरह से वुंड केयर होगा कि फिर उसके बाद ये पैड्स वगैरह यहाँ पर आएंगे, पैड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और एक स्पेशल किस्म की डिवाइस बनाई गई है इसके लिए जिसको नेगेटिव वुंड प्रेशर थेरेपी कहते हैं, कि पूरे ज़ख़म को या पाव को पूरा एक पैक में बंद कर देते हैं,
जी
उसमें से सक्शन किया जाता है, तो जो भी पस वगैरह जम रहा है वो मशीन से
मशीन से सेक्शन करके
सक्शन
उसको
हो
निकाला
जाता है।
जा
जी
सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी मालूमात और बहुत ही मुफीद चीज़ें आपने बताई। हमारे पास और वक्त है डॉक्टर साहब से बात करने का या
पचासी
नहीं?
का वक्त आ चुका है अब।
खुदा हाफिज़।
जी हाँ,
तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातचीत पसंद आई होगी और डॉक्टर साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए, थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन फिर भी आपने अपने का वक्त में जो है पूरी मालूमात हमको दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से इंशाल्लाह आपको जहमत देंगे।